نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، ہم آج جمع ہوئے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے جہاں ہم پر بے شمار احسانات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا احسان رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. آج ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے کہ ہم زندہ سلامت ہیں اور صحت کے ساتھ ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھنے والے ہیں. کیونکہ اس گزشتہ سال میں اس قدر اموات کا سلسلہ رہا ہے، ہر ایک کے خاندان میں یا دوست احباب مل جلنے والوں میں کسی نہ کسی کی وفات ضرور ہوئی ہے. اموات کی شرح پہلے سے بہت زیادہ رہی ہے. سوچیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہو سکتے تھے کہ جو کووڈ سے تنہا کسی ہسپتال میں دم توڑ جاتے اور یہاں تک نہ پہنچ پاتے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں باقی رکھا اب تک. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بھی ہمیں صحت، سلامتی اور ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ دکھائے. اس کی یہ بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ وہ یہاں تک ہمیں لے آیا. صحابہ کسی شخص کے اسلام کی جو عمر ہے اس کا اندازہ رمضان المبارک سے لگایا کرتے تھے کہ فلاں نے اتنے رمضان دیکھے ہیں، یعنی رمضان کو پا لینا ان کے لیے اتنی بڑی سعادت تھی کہ فلاں کی رمضانی عمر کیا ہے. تو یہ مہینہ کیوں اسپیشل ہے؟ یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ کیا ہے اس مہینے میں؟ تو سب سے پہلے تو اس کا نام رمضان روما دوسی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ چیزوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ گناہوں کا تو بوجھ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو انسان گلٹ میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرے گناہوں کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان دنیا کی بھی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. پرانے لوگ، جو پرانی قوموں کے واقعات آتے ہیں، تو وہ اپنے نبیوں کو منحوس کہتے تھے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصابک من سیئت فمن نفسک، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے نا، تو وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی. لہٰذا گناہ انسان کے اوپر مصیبتیں آنے کا باعث بنتا ہے، گناہ انسان کو مسئلوں میں ڈالنے کا باعث بنتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے، غم لے کر آتا ہے، مسئلے لے کر آتا ہے، طرح طرح کی ایسی بیماریاں اور ایسے شدید جو پریشانی کے حالات ہیں وہ انسان کے اوپر لاتا ہے یہ گناہوں کا سلسلہ. پھر گناہوں سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور گناہ زندگی سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے عبادت کی بھی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ گناہ. क्या वजह होती है बाज दफा कि जिंदगी सारी ही गुजर जाती है और इंसान हाथ मलता रह जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। क्या वजह होती है कि रोजी से इंसान महरूम कर दिया जाता है? तो इसकी बहुत बड़ी वजह इंसान के अपने गुनाह है। और सोचें वो रब हमें गुनाहों से पाक करने के लिए ये महीना भेज देता है, तो उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। गुनाहों के वबाल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुफियान सॉरी ताबेई हैं, वो फरमाते हैं कि 10 साल मैं कयामुल्लैल करता रहा, 10 साल तक, मगर एक गुनाह की वजह से मैं इससे रोक दिया गया। यानी वो पहचान लेते थे कि क्यों मैं किसी इबादत को अब नहीं कर पा रहा, मुझसे जरूर कोई गुनाह हो गया, मेरी कोई गलती है कि अल्लाह ने मुझे महरूम कर दिया। एक इमाम है वो कहते हैं कि एक दिन मैं मदरसे जा रहा था, रास्ते में किसी नामहरम औरत पे नजर पड़ गई, तो कहते हैं मैं मदरसे गया और मैंने जब हिफ्ज़ शुरू किया तो मुझे याद ही नहीं हो रहा था। वही आयतें जो रोजाना इतनी आसानी से याद हो जाती थी, वो आप हाफजा ऐसे लगता था कि चलना बंद हो गया। और उसकी वजह क्या बताई? वो एक गुनाह हो गया। हम भी देखें आम जिंदगी में, जिस दिन हम बाजार में बहुत घूम फिर के बड़ी शॉपिंग करके आए, या पार्टियों में जाएं और वहां पे दुनिया जहान की बातें करते रहे, गपशप होती जा रही है, उसके बाद नमाज में जी नहीं लगता। तो ये इंसान जो गुनाह करता है या गफलत के अंदर वक्त गुजारता है, उसका नतीजा ये होता है कि इबादत से मिठास खत्म हो जाती है। और फिर गुनाहों से इंसान की इज्जत भी चली जाती है। यही सुफियान सॉरी कहते हैं कि जब मैं गुनाह करता हूँ तो इसका असर अपने गधे में देखता हूँ कि वो मेरे साथ क्या करता है। यानी गधा अपनी सवारी काबू में नहीं रहती, वो भी तेवर दिखाने लगती है। मैं अपनी बीवी में देखता हूँ कि जैसे वो मुझसे बात करती है। तो हम भी बाज दफ़ा शिकायत करते ना कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, कहीं इसकी वजह हमारे अपने गुनाह ही तो नहीं है? क्योंकि मुसीबतों की वजह यही है, इंसान गुनाह जो करता है। और जब इस्तग़फ़ार करता है तो उससे सेहत भी मिलती है, उसको कुव्वत भी मिलती है, सलामती भी हासिल होती है। और ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रही, देखिए आप सूरह हूद निकाल के देखिएगा आयत 52 में कि कैसे हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं, मेरी कौम के लोगों तुम अपने पालने वाले से अपनी कसूरों की माफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ा दे। यानी कुव्वत हासिल होती है इंसान को, दुनिया की नेमतों से भी वो तभी लज्जत हासिल कर सकता है जब गुनाहों का बोझ उतार फेंके। आप सूरह नूह के अंदर देखें, नूह अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को क्या समझा रहे हैं कि तुम अपने रब से गुनाहों की बख्शिश मांगो, वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा, तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हें बागात देगा, तुम्हारे लिए नहरें निकालेगा। यानी फवायद वो बयान कर रहे हैं, और ये दुनियावी फायदे हैं सारे। बस दफा हम सोचते हैं कि शायद हम गुनाहों से इसलिए पाक हो कि हमारी आखरत समझ जाए, नहीं सिर्फ आखरत नहीं दुनिया भी संवरती है जब इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाहों का बोझ उतार फेंकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह ताला की नजरों से गिर जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है, जहन्नुम के करीब हो जाता है, और अल्लाह ताला से इसके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। हम दुनिया में बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी पावर वाले लोग होते हैं, बड़े ओहदों वाले होते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी उनकी जी हजूरी करते हैं। हमें पता है कि इनके साथ बना के रखनी है, और जो रब्बे कायनात के साथ बना के ना रखे, उसके साथ ताल्लुकात खराब कर ले, सिर्फ अपनी वक्ती थोड़ी देर की जुबान का चस्का है, या पेट की भूख है, या शर्मगाह की कोई का तकाजा है, उसकी वजह से अपने रब को नाराज कर ले, तो या आंखों की कोई लज्जत है, इसकी वजह से अपने रब की नाफरमानी कर बैठे तो कितना घाटे का सौदा है, कितनी महरूमी है उसके लिए। तो ये महीना वो महीना है कि जिसमें इस्तग़फ़ार करनी है, गुनाहों को छोड़ना है और दुनिया और आखरत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए गुनाहों को छोड़ना। तो ये सब चीज़ें जो हमारी उल्टी सीधी हुई हुई हैं, ये सब फिक्स हो सकती हैं जब हम इस्तग़फ़ार कर लेंगे। तो ये महीना गुनाहों के साइकिल को तोड़ने का महीना है। फिर बाज़ दफ़ा शैतान हमें इतना मायूस कर देते हैं, हम सोचते हैं मेरी तौबा कहाँ कबूल होनी है। तो आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। देखिए, उनको ज़मीन पर उतार दिया गया जन्नत से। वो भी कह सकते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे डायरेक्ट हुक्म दिया था कि इस फल के करीब ना जाना, अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी जन्नत खोल के रख दी थी, सिर्फ एक चीज़ से तो मना किया था, मुझे सजदा करवाया फरिश्तों से, मुझे अपने हाथों से बनाया, ये मैंने क्या किया, मेरी तो तौबा कभी कबूल नहीं होनी, लिहाजा वो तौबा ही ना करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तौबा की और उनकी तौबा जब कबूल हो गई तो अल्लाह ताला ने फिर उनको वही मुकाम दे दिया। देखिए, पुराने पाक में कहीं उनको ऐसा नहीं कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम बस अल्लाह की नज़रों से गिर गए, उन्होंने गलती की थी और उसके बाद वो कभी दोबारा अल्लाह की नज़रों में नहीं अपना मकाम पा सके, ऐसा कहीं नहीं। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहु अस्तफा आदम व नूहन व आले इब्राहिम व आले इमरान अला आलमीन। अल्लाह ने तो चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के ऊपर, तो आदम अलैहिस्सलाम वापस अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सके किस बिना पे, तौबा के जरिए। हम भी अगर चाहते हैं ना कि गुनाहों की वजह से हमारा मकाम पता नहीं अल्लाह की नज़रों में कितना गिर चुका, तो हम वापस वो मकाम पा लें, बेस्ट टाइम इस रमज़ान कि हम वापस वो स्टेटस अटेन कर सकें जो हमारा कभी था, जो हमने खो दिया, जो हम कहीं दूर निकल गए थे, वापस आने का वक्त है। इब्ने तैमिया कहते हैं, मेरे लिए जब कोई भी चीज़ मुश्किल होती है तो मैं अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम ये कहता हूँ। तो उनके शागिर्दों ने पूछा कितनी दफ़ा कहते हैं, फरमाया 1000 दफ़ा, 1000 दफ़ा। तो प्यारी बहनों, ये अल्लाह की तरफ पलटने का महीना है, तौबा करके करीब आ जाए। आप जैसे मसलन प्यास लगी हुई है और किसी सहरा में खड़े हैं, पानी बहुत दूर है, तो आपकी प्यास बुझ नहीं सकती, आपको पानी के करीब जाना होगा प्यास बुझाने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात अस्सलाम है, सलामती देने वाली है। हम कहते हैं ना, अल्लाहुम अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तो जो सलामती देने वाली ज़ात है उससे अगर दूर हो गए तो हमें सलामती कहाँ मिलेगी, उस सोर्स है सलामती का, वहां से सलामती सिर्फ मिल सकती है, तो उसके करीब होना है तब हमें सलामती मिलेगी, आग से, बुरे अंजाम से, हमेशा की रुसवाई से। और दुनिया में भी सलामती मिलेगी, ये जो बीमारियां हैं आजकल इनसे सलामती, मुसीबतों से सलामती, आजमाइशों से सलामती, बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी से सलामती, हादसात से सलामती, हर किस्म के गमों से और परेशानियों से सलामती। तो जब अल्लाह जो अस्सलाम है उससे हम करीब होते जाएंगे, तो जितना करीब होते जाएंगे उतनी सलामती मिलती जाएगी। तो कुर्बतों के इस महीने में दूरियों को पार्ट करते हैं, दूरियां ख़त्म करते हैं, फासलों को ख़त्म करते हैं। वो फासला जो आ गया था ना इतने 11 महीनों में, हम भूल गए थे, तो करीब चले जाएं। गुनाह हैं जो हमें दूर कर देते हैं, नेकियां जो करीब करती हैं। हम तो इतने मोहताज हैं अल्लाह ताला के कि हमें तो कभी कोई गुनाह करना ही नहीं चाहिए, नाफरमानी हमने नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे जानबूझ के। पिछले दिनों मैं एक सफ़र पे थी, आपको एक ये वाक्या बताती हूँ। तो जब मैं जिस जगह पर थी वहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा उसकी खबरें आने लगी राइट एंड लेफ्ट से। तो मैं बड़ी परेशान हुई क्योंकि मेरे वापसी का टाइम था और अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, फिर तो मैं फ्लाइट नहीं चढ़ सकती और फिर मेरा आगे क्या होगा रमज़ान का और मैं स्टक हो जाऊंगी। तो मैं बड़ी परेशान थी और मैंने बड़ी दुआएं की अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कि या अल्लाह मेरा टेस्ट नेगेटिव आ जाए ताकि मैं सफ़र करके अपने घर पहुंच सकूं। आप सोचें कि जब मैं वो दुआएं कर रही थी तो मैंने सोचा कि अल्लाह अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होनी, फिर मेरी अगली दुआ शुरू हो जानी, अल्लाह मुझे जहाज़ पे खैर से चढ़ा देना, अल्लाह खैर से मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ सकूँ, और फिर वहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होनी। जब मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी, जहाज़ में बैठ जाऊँगी, तो उसके बाद दुआएं शुरू हो जाएंगी, अल्लाह मेरा सफ़र आसान कर देना, खैर से घर पहुँचा देना, सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस सही करा देना, आसानी कर देना, कंफर्टेबल सफ़र करना, कोई दिक्कत ना आए। वो जब मैं सफ़र से ख़त्म करके वहाँ पे उतरने लगूंगी तो अब ये होगा कि अल्लाह घर खैरियत से पहुँचा देना, घर पहुँच जाऊँगी तो उसके बाद मेरी अगली दुआ होगी अल्लाह अब ये जितने दिन रह गए हैं रमज़ान से पहले के, अल्लाह ये खैर वाफियत के गुजार देना। और फिर वो गुजरेंगी, अभी रमज़ान शुरू नहीं होगा, तो फिर होगा कि अल्लाह रमज़ान को ईमान के साथ और सेहत के साथ और आफियत के साथ अच्छी इबादत करा लेना, अल्लाह इसमें मगफिरत कर लेना। मैंने सोचा मेरी तो हाजतें कभी भी पूरी नहीं होनी, मैं कितनी ज्यादा मोहताज हूँ, मैं इतनी मोहताज हूँ, ये सिर्फ एक बात है। वैसे तो हम पल पल के मोहताज हैं, हम एक सांस लेने में भी अल्लाह के मोहताज हैं, मगर बाज दफा हम इसको रियलाइज नहीं करते क्योंकि सांस आ रही होती है ना आराम से, जहां पे हम फंसते हैं ना, हमारी गर्दन कहीं पकड़ी जाती है ना, वहां पे देखें फिर वहां पे सही फिर वाकई एहसास होता है कि हम कितने मोहताज हैं। ला हमारी मोहताजी तो कभी खत्म ही नहीं होती, हमारी एक चीज शुरू होती है तो अभी वो नहीं खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी नहीं खत्म होती तीसरी शुरू होती। आप ये देख लें, आप में से कई लोग अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे होते, जब वो रिश्ते तलाश कर रहे होते यही दुआएं थे, अल्लाह रिश्ता मिल जाए, अल्लाह अच्छा रिश्ता मिल जाए, अल्लाह दिन और रात दुआएं हैं, रात को भी आंख खुल रही है, यही दुआएं यही दुआएं। अच्छा रिश्ता जब मिल जाता है अल्लाह ताला वो भी हमें पसंद कर ले, हमने तो उनको पसंद कर लिया, अब हो जाए रिश्ता, अब वो हो गई हाँ, तो अब ये है कि अल्लाह शादी का दिन खैरियत से गुजर जाए, शादी हो गई तो अल्लाह अब ये खुशियों के साथ बसी अपने घर के अंदर, अच्छा वो खैर से रुख्सत हो गई तो अब ये कि अल्लाह ताला इनको साले नेक और सही सलामत औलाद दे देना। यानी सिलसिला हमारा रुकता ही नहीं है, और मुझे इतना शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह मैं इतनी मोहताज हूँ, इतनी मोहताज हूँ कि मेरी मोहताजी ख़त्म नहीं हो रही, इसके बावजूद मैं तेरी वैसी फरमा बरदारी नहीं कर पाती जैसी होनी चाहिए, जैसे तेरा हक है। अगर इंसान अपने वालदेन या अपने शौहर या अपनी औलाद, कोई भी प्यारा रिश्ता आप ले, उनके सामने आप अपनी एक डिमांड रखें, अभी वो खत्म ना हो, अभी वो को करके दें तो आप दूसरी फरमाइश लेके खड़े हो जाओ, अभी वो उसको पूरी करने में लगे हो तो आप तीसरी एक और ले आए, फिर चौथी एक और ले आए, तो वो भी तंग आ जाएंगे और वो कहेंगे तुम्हारी फरमाइशें ही पूरी नहीं होती, तुम्हारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती, वो आपके जितने मर्जी प्यारे हैं मगर कुर्बान जाऊं सर रब के कि हमारे गुनाहों के बावजूद हमें धुतकारता नहीं है, कहता नहीं है कि बार बार आ जाती, तुम तो एक चीज लेकर आती तो दूसरी तुम्हारी शुरू हो जाती, दूसरी लाती तो तीसरी शुरू हो जाती, वो कभी ये नहीं कहता, हालांकि हम किस कदर उसकी नाफरमानियां करते हैं। हमारा तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें हम कोई भी नाफरमानी ना करें, जिसमें हम गफलत कमे वक्त ना गुजारे। वो तो किसी शायर ने कहा ना, जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो दम जो ये सांस गफलत में गुजर गई वो काफिर है। तो हमारी तो कितनी सांसें गफलतों में गुजरती है, हमसे तो कोई जरा देर मुंह मोड़ ले ना, हम कहीं जाएं और किसी को पता चल गया कि हम आए हैं और वो हमें पूछे ना, हमें कॉल ना करें, तो हम कहते हैं इसने मुझे कॉल नहीं की, मैं 10 दफा इसको कॉल नहीं करूंगी। इसने मुझे नहीं पूछा, इसको तो पता चल गया कि मैं आई, तो इसने मुझे पूछा ही नहीं तो मैं भी नहीं इसको पूछूंगी। और वो रब कितनी दफा हमें बुलाता है, कितनी दफा उसकी तरफ से पुकार आती है, हय्या अल फला, कितनी बार उसने कुरान में हमें पुकारा, या अय्युल्लज़ीना आमनू। हम मुंह मोड़ते हैं वो फिर भी बुलाता है, वो रमजान भेज के हमें बुलाता है। ये उसके बुलाने का अंदाज है। तो वो हमसे मुंह नहीं मोड़ता, हम भूल जाते हैं। तो ये महीना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाने का महीना है। वो ताल्लुक जो टूट गया इतने दिनों में, इतने महीनों में, वो जो हमारा अल्लाह ताला के साथ जिस तरह मजबूत होना चाहिए ताल्लुक, उस तरह नहीं रहा, उस ताल्लुक को बहाल करने का महीना। वो जो हम कट ऑफ हो गए थे, राबता टूट गया था, उस राबते को बहाल करने का महीना। वो जो हम आवारा फिर रहे थे, सुबह शाम की एक रूटीन में इतने फंसे हुए थे कि मौका ही नहीं मिलता था कि अल्लाह ताला के करीब हो जाए, तो ये रमजान इसलिए आता है कि अल्लाह ताला हमारी ब्रेक लगवा दे कि बस अब छोड़ दो, आ जाओ मेरी तरफ, तूने नाता तोड़ा हुआ था इतने दिनों से, तो आ जाओ मेरी तरफ। और वो इतने प्यारे तरीके से बुलाता है, इतनी मोहब्बत से इंसान को खींच के अपने करीब कर लेता है। ये मैं कैसे कह रही हूं, क्या दलील है इसकी? आप ये देखें कितनी बड़ी दलील है, हर नेकी का अजर इतना बढ़ा देता है कि आ जाए मेरे बंदे। फिर इंसान को शौक पैदा होता है ना, रोजा रखोगे तो मैं इतना अजर दूंगा कि तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते तुम। जब मेरे पास आओगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा तुम्हें रिवॉर्ड देता हूं। फर्ज अदा करोगे ना तो 70 गुना उसका अजर बढ़ा दूंगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नफल पढ़ोगे ना, फर्जों के बराबर उसको गिन के रखूंगा। कयामुल लैल करोगे ना तो पिछले सारे गुना बख्श दूंगा। रोजा रखोगे ना, पिछली सारी खताएं माफ कर दूंगा। और इसमें एक रात सिर्फ तुम इबादत कर लोगे, एक ऐसी रात होगी जिसमें इबादत कर दोगे, 83 ईयर्स की इबादत के सवाब से ज्यादा सवाब दे दूंगा। इसकी हर रात में मैं जहन्नुम से लोगों को आजाद कर दूंगा। इफ्तार के वक्त जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये सब क्या है, समझ नहीं आती आपको? ये बुलाने के तरीके हैं, ये उसकी शफकत है, ये उसकी मोहब्बत है, ये है उसका बंदों पर रहमान और रहीम होना, ये है उसका अशकूर होना, कदरदान होना, ये है उसका चाहना कि मेरे सारे ही बंदे अपनी बख्शिश पाए। देखो हमारा तो इतना मिजाज है कि हम बात नहीं करते जो हमसे मुंह मोड़े, और अल्लाह ताला जो गनी है और हम है फकीर। अल्लाह गनी है, उसको हमारी जरूरत नहीं, उसके बुलाने के ढंग कैसे हैं? वरना दफा करो ऐसे बंदों को जो गफलतों पे पड़े में, जाने दो इनको जो गुनाहों में पड़े में, सारा साल तो इधर आए नहीं, अब क्या लेने आते हो? हम तो ऐसे कहे ना किसी को, हम तो ऐसे ताने देते हैं ना, हाँ अभी याद आ गई तुझे, अब आ गया तू, अब जरूरत पड़ी तो आ गया। ओ मेरा रब कितना रहीम है, कितना वो गफूर है। वो फिर वाकई दिल से निकलता है कि अल्लाह तू तारीफ के काबिल है, अल्लाह तू वाकई तारीफ के काबिल है, हम तेरी तारीफ नहीं कर सकते जैसी तेरी तारीफ करनी चाहिए, हमने तेरी कदर नहीं पहचानी अल्लाह जैसी तेरी कदर करनी चाहिए, कि तू वाकई रहमान और रहीम है, अरहम और राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, और तू अलवदूद है मोहब्बत करने वाला। अल्लाह वाकई तू अकबर है, अल्लाह वाकई तेरी शान बुलंद है। हमारे जैसे थोड़े दिले लोग हाँ, लोगों की एक एक चीज पकड़ के बैठ जाते। अल्लाह तूने तो कह दिया, मैं सारे पिछले गुनाह बख्श दूंगा। तू कितना बेनियाज है अल्लाह, तू कितना बेनियाज है। तू हमें पकड़ना चाहे, तुझे कौन रोक सकता है? किसी ने अल्लाह को रोकना? कोई अल्लाह को कह सकता है क्यों पकड़ा इसको? नहीं, तू कितना मेहरबान है अल्लाह, तू उसकी मेहरबानियों की हद ही नहीं है। उसमें इसकी मेहरबानियों के ये तरीके हैं, जैसे इस महीने को कह सकते हैं आप कि ये ही वो महीना है जो अल्लाह की रहमतों का महीना है, ये ही वो महीना है जो अल्लाह से कुर्बतों का महीना है। इसीलिए फरमाया ना, फफिरू इलल्लाह, तो ये अल्लाह की तरफ दौड़ के आ जाने का महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की हदीस है, रमजान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकतों वाला है। अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, तुम्हारे नफ्सों को देखता है और मलाइका पर फख्र करता है। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह गया। तो अल्लाह हमें देखता है और मलाइका पे फखर करता है, देखो मेरे बंदों को, मेरे लिए भूखे प्यासे रहते हैं। तो ये वो महीना है कि जिसके अंदर हमने अल्लाह की तरफ दौड़ना है। ये महीना वो महीना जो जहन्नुम से हमें आजादी दिला सकता है, क्योंकि इसकी हर रात अल्लाह ताला उन लोगों को जिनका नाम जहन्नुम वालों में लिख दिया जा चुका था, उनको जहन्नुम से आजाद कर देता है। और दुनिया में भी आप देखें, कोई किसी को आजाद कर देना तो फिर उसको गुलाम नहीं बनाता। तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जिसको वो एक दफा आजाद कर देगा फिर उसको जहन्नुम में नहीं डालेगा। एक बद्दू ने एक अजीब दुआ की, कहने लगा है, अल्लाह तूने तो गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया, तो हम भी तेरे गुलाम हैं, तो तुम हमें भी जहन्नुम की आग से आजाद कर दे। तो चले हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम भी तेरी बंदियां हैं। वो बहुत ज्यादा कमजोर, मैं तो कहती हूँ मैं तो सबसे ही ज्यादा कमजोर, कमजोर तरीन तेरी बंदी। तो अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया है कि कमजोरों के साथ अच्छा सलूक करो, तो अल्लाह तू हमारे साथ अच्छा सलूक करना, हमारी कमजोरी पे रहम करके। हम भी कमजोरों पे तरस खाते हैं, हमारे सामने कोई कमजोर आ जाता है, कोई जयीफ आ जाता है, तो हम उसके पर रहम खा लेते हैं। हम कहते हैं छोड़ो इसको, ये तो कमजोर सा है, मिस्कीन सा है। तो अल्लाह तू तो अरहमुर रहीमीन। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहदिस थे, बड़ी हदीसें उन्होंने लिखी, मगर मौत के वक्त अपना गाल जमीन पे रगड़ते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम करना। ये नहीं फरमाते कि अल्लाह मैंने इतनी तेरे दीन की खिदमत की है तो मुझ पे रहम कर देना, कहते हैं मेरे बुढ़ापे पे रहम करना, क्योंकि बादशाह भी अपने बूढ़े गुलामों पे रहम खा लेता है कि सारी जिंदगी इसने खिदमत की है तो इसको आजाद कर देता हूं। तो अल्लाह तू तो जो सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, तो तू मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। पता है जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं ना, कलमा शहादत पढ़ने वाले दिल से इखलास के साथ, कयामत के दिन उन लोगों के तीन किस्म के अंजाम हो सकते हैं। एक अंजाम ये हो सकता है कि बगैर हिसाब किताब के और बगैर किसी अजाब में डाले हुए उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में स्ट्रेट चले जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं उनका, कोई पूछ पड़ताल नहीं उनकी। दूसरी किस्म के ऐसे मुसलमान होंगे जिनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, अजाब में तो नहीं डाला जाएगा, सजा तो नहीं उनको होगी, अगर हिसाब किताब होगा उसके बाद वो जन्नत में दाखिल होंगे। आप छोटे से हिसाब किताब को इमेजिन करें, छोटे से, ये कोई नहीं है, मगर मैं आपको जस्ट एक बताने के लिए, समझाने के लिए। आप एयरपोर्ट पे उतरती हैं, वो आपको एक साइड पे ले जाए, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन करें, फोन खोलें, ये करें, वो आपकी कब की फ्लाइट आई हुई, सुबह से शाम हो गई, 8-9 घंटे हो गए वो वहां पे बिठा के छोड़े, उसके बाद फिर आपको जाने दें। निकल तो आप गए, लेकिन आप बताएं कि वो वक्त कैसा होता है। बाहर वालों की हालत अलग खराब होती है, और जो तो बैठा होता है उसकी तो हालत ये होती है कि काटो तो लहू नहीं, इतनी बुरी हालत होती है। तो ये हिसाब किताब भी आसान नहीं है, मगर फिर भी बचत हो गई कि जन्नत में चले गए। चलो, तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनका हिसाब किताब भी है, फिर उसके बाद उनको जहन्नम में सजा भी मिलेगी, फिर उसके बाद वो कहीं जन्नत में दाखिल होंगे, तो दाखिल तो वो भी हो जाएंगे जन्नत में आखिरकार, लेकिन उनका रास्ता बड़ा ही मुश्किल होगा। ये जहन्नम से गुजर के जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये महीना वो है कि जहन्नम से खलासी मिल सकती है। सबसे बड़ी जो मुसीबत है, इससे जान छूट सकती है। हम तो छोटी छोटी दुनिया की परेशानियों के ऊपर कितनी दुआएं करते हैं, अल्लाह ये ना हो जाए, अल्लाह फलाने के साथ सही हो जाए, उसको सेहत मिल जाए, उसकी रोजगार लग जाए, उसको औलाद नेक मिल जाए, उसका रिश्ता हो जाए। ये छोटी छोटी परेशानियां ही ना, हालांकि हमें ये भी बहुत बड़ी लगती हैं, हम इनके ऊपर बड़े ही परेशान होते हैं। तो वो जो बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत है, जिससे पैगंबरों ने भी पनाह मांगी है, कितनी बड़ी मुसीबत होगी, जिससे अल्लाह ताला ने कुराने पाक में सिखाया है कि इससे निजात की दुआएं करो, वकीना अजाब नार कहो, तो वो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। ये वो महीना है जिसमें हम इससे छुट्टी हासिल कर सकते हैं, ये वो महीना है जिसमें हम इस आग से अपने आप को बचाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए सआदत है कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये हमारी हमेशा का वो जो गम और मुसीबत और बड़ी परेशानी है, उससे ही हमारी निजात हो जाए। लिहाजा इस महीने को तो बड़ा खुशी का महीना होना चाहिए हमारे लिए, कि शुक्र है ये महीना आ रहा है, शुक्र है इस महीने के अंदर मैं कितना कुछ पा सकती हूँ, जहन्नुम से मेरी निजात हो सकती है, मेरी बख्शिश हो सकती है, और बख्शिश से मेरे दुनिया के काम नहीं है सिर्फ संवरेंगे, मेरी आखरत भी संवर सकती है, मैं अल्लाह ताला के करीब हो सकती हूँ, मुझे सलामती मिल सकती है। इसी तरह रमजान मांगने का महीना है, दुआओं का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के लिए खुद फरमाता है, मांगो मेरे से, मांगो मांगो मांगो, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकता, उसके खजानों में कमी ही नहीं है, वो बकील भी नहीं है, उसको किसी ने पूछना भी नहीं है, अल्लाह तूने क्यों दिया, फलाने को ज्यादा क्यों दे दिया, वो किसी के लिए चाहे खजानों के मुंह खोल दे, जो चाहो वो अता करेगा। आपको पता है ना कि रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है। तो ये वो महीना है कि सारी अपनी दुआओं को समझने, कबूलियत का शर्फ हासिल हो सकता है, हमारी सारी मोहताजियां दूर हो सकती हैं, हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। लोग कहते हैं मुझे मांगना नहीं आता, नहीं, जब दिल में दर्द होता है ना तो मांगना खुद ही आ जाता है। कोई किसी माँ को सिखाता है कि उसका बच्चा आईसीयू में है और उसका बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, तो माँ को कोई सिखाता है ऐसे दुआ करो तो, और वो कहे मुझे तो मांगना ही नहीं आता, नहीं होता ना ऐसे, वो दुआएं खुद ही निकलती हैं, आंखों से आंसू जो टप टप बहते हैं ना, इनमें दुआएं होती हैं, वो हाथ खुद ही बुलंद हो जाते हैं, वो लफ्ज खुद ही भी आ जाते हैं। तो जब हमें भी फिक्र होगी ना अपनी आखरत की भी, जब हमें परेशानी होगी ना वहां की, और जब हमें हमारा दिल इस चीज के अंदर होगा कि किसी तरह हमारी बख्शिश हो जाए, तो मांगना आ जाएगा, फिर कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं किसी को, तो रमजान में अल्लाह ताला से मांगे और मांगे और दिन और रात मांगे, अपनी जुबान में मांगे या किसी मर्जी और जुबान में मांगे, आप बस मांगते रहे, अल्लाह के दर के भिखारी बन जाए, दिन रात ही मांगे, उसने कोई कहना थोड़ी आपको कि मांगती जा रही हो, तो बस ही नहीं करती, तो वो तुम्हारे मांगने से नाराज नहीं होता, खुश होता है तुम्हारे मांगने से। कोई दुनिया में ऐसा दिखा दे जो आपके मांगने से खुश हो, वो मांगने से खुश होता है। बल्कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला तो कितना मेहरबान है कि रमजान में अल्लाह ताला हामिली ने अर्श जो फरिश्ते हैं उनको भी हुक्म देता, तुम अपनी तस्बीह छोड़ दो, रोजेदारों की दुआओं पे आमीन का, ये जब रोजा इफ्तार करें ये दुआएं करते हैं ना, या रोजे में दुआएं करते हैं, तो बस इनकी दुआओं पे आमीन कहते जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये वो महीना है जिसके अंदर हमने अपने गुनाहों को भी बख्शवाना है, अपनी जहन्नुम से फरागत भी, निजात भी पानी है। ये वो महीना है जिसमें हमने अपनी सारी दुआओं को भी कबूलियत का दर्जा दिलाना है, और ये मेहनत करने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का हाल ये था, हालांकि आप तो सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे, लेकिन रमजान शुरू होता रंग बदल जाता था, नमाजों में इजाफा हो जाता था, दुआओं में आजी आ जाती थी, खौफ गालिब होता था, हालांकि वो तो दुआ मांगते ना भी तो उनको तो सब कुछ मिल गया था, अल्लाह ने वादा कर दिया था, सौफ़ युआती का रब्बू का पता रहा है ना, भी हम आपको इतना देंगे आप राजी हो जाए, मगर वो भी मांगते थे। तो इस महीने के अंदर मेहनत करें, खुद को मेहनत के लिए तैयार करें, खुद ये नफ्स जो है ना ये मेहनत को पसंद नहीं करता, मेहनत से भागता है, सोना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है, इसको जरा लगाम देने की जरूरत है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बड़ा 11 महीने इसने मूज और घोड़े की तरह जो मर्जी जिधर मर्जी को हमें दौड़ाया है, तो अब हमने इसकी बागें खींचनी है। एक दफा हजरत हसन बसरी रमजान में कहीं जा रहे थे तो कुछ लड़कों को देखा हंसी मजाक कर रहे थे, यानी ऐसे खड़े हुए जैसे बच्चे होते हैं, हंसी मजाक कर फन कर रहे थे, तो फरमाया सुभान अल्लाह ये महीना तो दौड़ लगाने का है, और हम इस दौड़ के अभी बीच में हैं, तो या तो तुम दौड़ जीत चुके इसलिए तुम खड़े हुए और यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हो, या तुम हार गए हो तो तब तो तुम हंस सकते ही नहीं हो। तो खुद सोचें, हम भी तो अभी जीते नहीं हैं, हम कैसे भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे भी इस महीने में मेहनत से जी चुरा सकते, हम कहते हमारे पास टाइम नहीं। तो याद रखिए, किसी के साथ भी आपने ताल्लुक बहाल करना हो या ताल्लुक मजबूत करना हो तो उसको टाइम देना पड़ता है, इसीलिए वो कहते हैं ना बच्चों को टाइम दें, शौहर को टाइम दें, क्योंकि रिलेशनशिप जहां आपने रखने हैं ना और मजबूत करने हैं, वहां पे एक ही चीज है जो काम आती है, वह है टाइम देना, टाइम साथ स्पेंड करना। आप अल्लाह ताला के साथ चाहते तो हैं कि मेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए, लेकिन आप उसके लिए टाइम नहीं निकालना चाहते, इस तरह से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। सारा साल ठीक है हमने इधर उधर वक्त गुजार दिया, लेकिन अगर रमजान में भी मेहनत ना की तो और कब करेंगे। इस महीने में मैंने आपको बताया अल्लाह ताला बंदों की कोशिशें देखता है, तो नेकी में मुकाबले करें, एक दूसरे से आगे बढ़े, ताकि अल्लाह ताला हमारी भी नेकी के ऊपर फरिश्तों में फख्र करे। साहबा कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रमजान और गैर रमजान बराबर हो, यानी रमजान और रमजान के अलावा दिनों में कोई फर्क ही नहीं, उसी तरह जैसे रमजान से पहले कर रहे थे उसी तरह चल रहे हैं। नहीं, ये महीना ऐसा नहीं है, तो क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह नजम में, वा अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वो ही कुछ है जो वो कोशिश करता है, वह अन्ना सायहू सौफ युरा, उसकी कोशिश देखी जाती है, अल्लाह ताला देख रहा है उसकी कोशिशों को, कौन कितनी मेहनतों में लगा हुआ है, अल्लाह को राजी करने के लिए। हदीस में आता है, इब्ने आदम तू मेरी तरफ रुख कर तो मैं तेरी तरफ चल के आऊंगा, तू मेरी तरफ चल के आ तो मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। तो आप पहला कदम आपने उठाना है अल्लाह की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर शख्स सुबह करता है, तो कोई तो अपने नफ्स को आजाद करा लेता है और कोई उसको हलाक कर देता है। कैसे? यानी ये दुनिया ना एक मैदान अमल है, इस मैदान में कोई अपनी जान घुला के मेहनत करके अपनी आखरत की जिंदगी को संवार लेगा, और कोई इस टाइम को जाया करके आखरत को तबाह कर लेगा। तो जिंदगियां सबको लिमिटेड मिली हुई है, किसी को अनलिमिटेड टाइम नहीं मिला हुआ। इसी में हमने तैयारी करनी है। तो ये महीना समझ लें तैयारी का महीना है। किस चीज की तैयारी का? अल्लाह ताला से मुलाकात की तैयारी का। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफर कर रहे थे, बहुत सख्त गर्मी का दिन था, धूप भी बहुत शदीद थी, वो सख्त प्यास लगी हुई थी सबको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोजे से थे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपने रोजा क्यों रखा, रमजान भी नहीं है और दिन भी सख्त गर्म है। तो आपने जवाब दिया मैं तैयारी कर रहा हूं उस दिन की जो इससे भी ज्यादा शदीद गर्म होगा। तो वो तैयारी करें और हम आराम से बैठे रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। उनको तो तैयारी की जरूरत भी ना थी, हमें कितनी जरूरत है। तो इसलिए अपना वक्त जाया नहीं करना, ना फेसबुक पे बैठे ना इंस्टाग्राम देखें, कुछ नहीं होता, ना खबरें पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा दुनिया के हालात में। अगर हमने कुछ दिन ना ये फेसबुक वगैरह पे अपनी एंट्रेंस दी तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, दुनिया में तबाही मचेगी। डाइजेस्ट ना पढ़े, हम कहते हैं टाइम पास भी तो करना होता है ना, रोजा भी तो गुजारना है, रोजा नहीं गुजरता फिर तो। ये टाइम पास करने के दिन नहीं है, ये तो बड़े कीमती दिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को चाहिए कि वो देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या भेजा हुआ है। हमारे पास है क्या? ये मुहासिबे के दिन है, इंसान अपना हिसाब किताब कर ले, मैंने कल के लिए कुछ जमा भी किया है कि नहीं, मेरे अकाउंट में कुछ है भी कि नहीं। आप देखिए ना एनुअल ऑडिटिंग हर जगह होती है, देखते हैं वो कि भाई कितना हमारा बचत हुई, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा खसारा हुआ, हर कंपनी करती, हर बिजनेस की होती है। तो हम अपनी जिंदगी की भी ऑडिटिंग करें, हमें पता चले क्या किया हुआ अभी तक, किधर खड़े हुए हैं, कितना गेन करना है अभी, कितनी और जिंदगी ज्यादा से ज्यादा रह गई है। तो ये एहतसाब का महीना, खुद को नाकारा ना करें रोजा रख के। ये चुस्ती का महीना है, सुस्ती का नहीं है। सोते रहें दोपहर तक, उठें और उसके बाद कहें पर रोजा बहुत लग रहा है। जितनी आप इबादत करेंगे ना उतना रोजा आसान हो जाएगा, और जितना आप सोते ही सोते दिन गुजारेंगे रोजा फिर भी मुश्किल ही लगेगा उठ के भी। ये तो इतना प्यारा महीना है, इतनी इसकी बरकतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर ऐसा महीना आ रहा है जो मुबारक महीना है। मुबारक का मतलब क्या? बरकतों वाला। बरकत क्या होती है? खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर, और वो खैर जो बढ़ती ही जाए। यानी इसलिए हम कहते हैं ना रमजान मुबारक, आपको तो क्या मतलब, इसकी खैर कसीर आप पाएं। तो ये बड़ा ही बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में रहमतों के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, शैतानों को चेन कर दिया जाता है। क्यों ये सारा कुछ क्यों किया जाता है? ताकि लोग सब आसानी से नेकी कर सके, दौड़ना जो चाहता है दौड़ सके, मेहनत जो करना चाहता है मेहनत कर सके, उसको कोई तंग करने वाला ना हो। और जन्नत के आठ दरवाजे आठों खोल दिए जाते हैं। क्यों? आप देखें जहां से आप जाते हैं ना ज्यादा लोग इधर से एंटर हो, वहां के ज्यादा दरवाजे बनाते हैं, ज्यादा वहां के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के बंद कर दिए गए। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई जाए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे यहाँ तक एंड अप हो। इससे भी पता चलता है ना अल्लाह ताला क्या चाहता है, कि लोग जन्नत तक पहुंच जाए, लोग जन्नत में दाखला हासिल कर सकें, उसके सारे ही दरवाजे खुले हुए, यानी एंट्रेंस आसान है उस इन दिनों के अंदर। जहन्नुम के सारे ही दरवाजे बंद हैं, अल्लाह नहीं चाहता कि कोई जहन्नुम में एंड अप हो। तो ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी शफकत है, ये उसकी हमारे साथ मोहब्बत की दलील है, ये उसका हमारे लिए रहमतों का नजूल है। फिर ये रोजे का महीना, रोजा रखने का मकसद क्या है? तकवा का हसूल। तकवा क्या है? कि जिंदगी का हर शोबे में हमने खुदा खौफी के साथ रहना, अल्लाह की रजा को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे रहना, यही बस तकवा। तो ये है इस इबादत का नतीजा। तो रोजा रखें इस मकसद को जहन में रखते हुए कि मैंने ये अटेन करना है, मेरे अंदर खुदा खौफी आ जाए, वरना सिर्फ भूख प्यास को में रहना ये रोजे का मकसद नहीं है। कोई अल्लाह ताला की दुनिया के अंदर कोई रिस्क की कमी तो नहीं थी कि हम जैसों को रोजा रखवा के कोई सेविंग करनी थी? हदीस में आता है जो रोजा रख के भी झूठ बोलना ना छोड़े तो अल्लाह को परवाह नहीं उसके भूखा प्यासा रहने की। इसका मतलब उसमें खुदा खौफी ही नहीं है, झूठ बोलता जा रहा है। तो जब खुदा खौफी नहीं तो फिर ऐसे रोजे का क्या फायदा? तो अगर खुदा खौफी नहीं है और हराम चीजों की तरफ देखते जा रहे हैं, खुदा खौफी नहीं है हराम के साथ रोजा खोल रहे हैं, खुदा खौफी नहीं है और बेहयाई के काम कर रहे हैं, खुदा खौफी नहीं है और गइबत और झूठ और चुगलियां कर रहे हैं, तो फिर ऐसा रोजा क्या है? सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास है, उसके अंदर कोई वो सब्सटेंस ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जो जिसकी खातिर रोजा रखवाया गया। लिहाजा अपने रमजान को ऐसा बनाएं कि वाकई उसके अंदर अल्लाह ताला को रजा करने वाली चीजें हों, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। अपनी दौड़ लगाएं कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशें देख के हमसे राजी हो जाए। आज वक्त लगा लेंगे, आज अपनी आखिरत के लिए मेहनत कर लेंगे तो एक दिन इसके ऊपर खुश होंगे। एक शख्स अपने बच्चे को बड़ा लाड से पालने वाला था, उसने इतना अपने बच्चे को लाड में बिगाड़ दिया, बच्चा खेलता कूदता हुआ बड़ा हुआ और वो कुछ भी ना बन सका और निकम्मा सा एक आदमी निकल आया। एक दिन वो कोई नौकरी कर रहा था तो किसी ने उसको थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उसको रियलाइज हुआ, उसने कहा काश ये थप्पड़ मेरा बाप मुझे मार देता उस वक्त जब मैं छोटा था, तो आज मैं यहाँ पे ना रुल रहा होता। तो अल्लाह ताला तो हमें, बल्कि जिसको हम कहते हैं ना हाय रोजे आ गए, हाय अब गर्मी, हाय अब ऐसा हो जाएगा, हाय अब रात को तरावी पढ़नी पड़ेगी, हाय अब मस्जिद जाना पड़ेगा, ये हाय वाय नहीं है, ये मेहनतें अल्लाह ताला इसलिए कराता है कि तुम्हारी अगली जिंदगी आसान हो जाए, ताकि तुम्हारी ये जिंदगी भी संवर जाए और आगे भी संवर जाए। देखिए कौन सी माँ चाहती है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो, मुसीबत में पड़ जाए बच्चा और उसका फ्यूचर खराब हो जाए? कोई माँ भी नहीं चाहती ना। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत तो माँ की मोहब्बत से कहीं ज्यादा है। माँ की मोहब्बत तो उसकी रहमत के एक हिस्से का भी अदना सा हिस्सा है, एक हिस्से का। उसकी रहमत के 100 हिस्से किए जाएं तो उनमें एक हिस्सा जो है वो माँ को नहीं मिला, एक माँ को नहीं, उस एक हिस्से को तो पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे तकसीम किया गया, तो उसमें से टाइनी सा हिस्सा एक माँ को मिला। अब उस इस माँ की मोहब्बत फिर देखेंगे, वो चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, तो जिस रब के पास 99 मोहब्बतें और रहमतें अपने बंदे के लिए, वो कभी चाहेगा कि मेरा बंदा मुसीबत में पड़े, कि उसने मुसीबत में डालने के लिए पता नहीं हमें रोजे दे दिया, उसने मुसीबत में नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगियां संवर जाए, वो चाहता है कि तुम हमेशा के गम से आजाद हो जाओ, वो चाहता है कि तुम उससे करीब हो जाओ। हदीस में आते हैं ना अल्लाह ताला दो गम और दो खुशियां इकट्ठी नहीं करता, यानी या तो दुनिया में आप मुशक्कत उठा लें, मुश्किल उठा लें और मेहनत कर लें, या आखिरत में जाके मुश्किलें उठा लें, एक जगह तो उठानी होगी। दुनिया में सैर सपाटे पार्टियां करके और बस सजने संवरने में खुद को लगाए रखें और यही मसरूफियात पाले रखें, या आखिरत में जाके ये सब हासिल कर लें? क्योंकि तो हदीस से भी हमें पता चलता है जिसने अपनी दुनिया बनाई उसने अपने आखिरत का जरूर कुछ ना कुछ नुकसान किया, क्योंकि आप एक तरफ ही टाइम दे सकते हैं ना, और जिसने अपनी आखिरत बनाई उसका दुनिया का तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही। तो कहीं आपको खाने में कमी करनी पड़ेगी, कहीं आपको अपने घर के कोई काम काज में, कहीं आपको कहीं और किसी चीज में कमी करनी पड़ेगी, तब आखिरत संवरती है। ऐसे ही आप चाहेंगे दुनिया में भी आप पता नहीं टॉप पे हो जाएं और फिर आखिरत भी आपकी ऐसी सुहानी हो जाए, ये नहीं होता। जाहिर है आप नमाज के लिए वक्त निकालेंगे, आप तहज्जुद के लिए वक्त निकालेंगे, आप अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेंगे, तो एक वक्त तो आपका उतना ही है, आप उधर लगा लो या उधर लगा लो। फिर इसी तरह आखिरी बात, आखिरी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है कि ये कुरान का महीना, इसमें कुरान नाजिल हुआ है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की शुरुआत हुई है, इस वजह से इसको कहा गया शाहरुल रमदान अल्लदी उन्जिला फीहिल कुरान, कि ये शाहरुल कुरान है। यही वो कुरान है जिसने उस माशरे की भी जिंदगियां बदल दी थी, उनको जहालत के अंधेरों से निकाला था। सहाबा कराम रदी अल्लाह अनहुम इस कुरान की वजह से हुए, जब ये वही आने लगी, इस कुरान ने इंसानियत को तबाही के रास्ते से जन्नत के रास्ते पर डाल दिया। उस वक्त भी इसने ही डाला था और आज भी यही डालेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम का वो मौजजा है जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, जो आपके बाद भी है। तो इसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाना है रमजान में, कि इमाम मालिक जो थे वो हालांकि मुहदिस थे, बड़े हदीस के आलिम थे, उनके बहुत बड़े बहुत शागिर्द होते थे, बहुत बड़ा उनका दर्स का हलका होता था हदीस का, मगर रमजान में वो हदीस भी बंद कर देते, वो हलके बंद कर देते हदीस के, सिर्फ कुरान को टाइम देते थे। तो कुरान पाक की तिलावत करें, तिलावत नहीं कर सकते जिन दिनों में, तो सुन लें, उसका तर्जुमा पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ें, इसको दिल में उतारें, ये हिदायत का पैगाम है, इसको याद करें, इसको नमाजों में दोहराएं, बस कुरान कुरान कुरान, फोकस यही होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक को कसरत से पढ़ो, कि ये बोलेगा और सिफारिश करेगा कयामत के दिन। यानी अब कुरान पाक अभी आपको किताब लगता है ना, लेकिन ये परसोनिफाई हो जाएगा, एक पर्सन की तरह हो जाएगा, एक इंसान जैसे एक शख्स की तरह होगा कयामत के दिन, तो इंसान के हक में या तो गवाही देगा या खिलाफ देगा, जिसने इसके ऊपर अमल किया होगा, इसको ज़िंदगी में अपना इमाम बनाया होगा, इसके पीछे चला होगा, तो ये उसके लिए हक में गवाही देगा। और जिसने इसको शेल्फ में बस सजा के रखा हुआ था, वो खोलने की जहमत नहीं करते थे, अमल तो दूर की बात है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह इसने मुझे पसे पुश डाल दिया था, मेरी गवाही इसके खिलाफ कबूल कर। किसी की अदालत में सोचें, किसी का मुकदमा हो जो जिंदगी और मौत का मामला हो, और वहां पे कोई मजबूत, कोई बहुत बड़ा गवाह खड़ा हो जाए किसी के खिलाफ, तो उस बंदे का क्या बाकी बचेगा फिर। तो इसलिए इस महीने को इस तरह से गुजारना है कि कुरान पाक के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए अपना जो हर साल प्रोग्राम होता है आज की नेकी का, वो भी लेकर आएंगे। आप लोगों को फ्लायर मिल चुका होगा इसका, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बना रहे हैं, और उन ग्रुप्स में वही लोग शामिल हों जो किसी और हमारे रहमा के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है, वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी लोगों को इंशाल्लाह उनके ग्रुप्स में मिल जाएगा प्रोग्राम भी, और कोशिश तो यही करें कि इसको लाइव सुने, और इंशाल्लाह उसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी कि कैसे आप अपना हर दिन बेहतरीन गुजारें। अब मैं कुछ सवालात की तरफ आती हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं, कि बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन हैं, ताकि हम थोड़ा सा इसको दोहरा लें, हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन थोड़ा सा दोहराई करने से इंशाल्लाह ताला बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। एक सवाल यह है कि रोज़े की नीयत के कोई अल्फाज हैं, तो ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो रोज़ा रखने की नीयत के हों, बस आपकी दिल में जो नीयत है बस वही है। जब आपने ये नीयत कर ली ना कि मैंने फ़र्ज़ रोज़ों के लिए नीयत ज़रूरी है, तो आपने जब नीयत कर ली ना, मसलन कल अगर रोज़ा है तो मैं नीयत आज कर लेती हूँ कि मैंने कल रोज़ा रखना है, मेरे दिल में ये इरादा है, तो बस यही नीयत है। क्या बवक्त ज़रूरत खाने का जायका चख लेने से रोज़ा टूट जाता है? ऐसा नहीं है, मगर चख लें ज़ुबान की टिप पे और उसके बाद उसको थूक दें। इसी तरह हम पूछा है कि क्या घर को डेकोरेट कर सकते हैं रमज़ान के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो क्या ये गुलूफ में आता है? तो ये कोई भी चीज़ अगर आप हद से बढ़ के करेंगे ना, कि उसके ऊपर इसराफ है और ये है, तो वो तो हर चीज़ ही गलत है फिर। लेकिन हाँ, आप हद में रह के आप सजा भी सकते हैं घर को, बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे मुल्कों में रहते जहाँ पे कोई यानी इस्लामी मुल्क नहीं है, तो बच्चे तो बेचारे अजान की आवाज़ से भी महरूम है, उनको रमज़ान की वो स्पिरिट नज़र नहीं आती। कम अज़ कम हम घरों में तो वो स्पिरिट रख सकते हैं ना, अगर बाहर नहीं है तो हम अपने घरों में बच्चों को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको रमज़ान का ज़रा उसकी एक्साइटमेंट हो कि ये कोई बड़ी चीज़ है जो हमें मिलने वाली है, और इसके लिए हम एहतमाम करते हैं। तो जहाँ अपनी इबादत का एहतमाम करते हैं वहाँ पे हम घर को भी उस तरह से सजाते हैं या मनाते हैं, या नमाज की जगह अपनी रखते हैं, या हम एक जगह अपने कुरान पाक और अपनी दुआओं की किताबें और अपनी तस्बीह या अपनी जो भी कोई चीज़ें हैं हम अपनी एक जगह रखते हैं और फिर हम वहाँ पे बैठ के इबादत करते हैं। और तो एक बच्चों को के अंदर शौक पैदा होता है। सरा ने पूछा कि भूल के खा पी ले तो क्या होगा, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। जो कोई किसी बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सके तो क्या करें, तो हर दिन के बदले जिस दिन भी आप जितने दिन आप रोज़ा नहीं रखते उस दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें, दो वक्त का खिलाएं तो बहुत अच्छा है। जो हामिला हैं, प्रेग्नेंट हैं या दूध पिलाने वाली हैं, अगर तो वो रख सकती हैं तो ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा दूध पिला रही होती हैं और बच्चे खाना भी खा रहे होते हैं तो वो उनका पेट भर जाता है, सॉलिड्स लेने लग जाते हैं, तो तब तो, या हामिला भी, सारी हामिला को ऐसा नहीं कि मुश्किल होती है, अगर मुशक्क़त नहीं है तो फिर रख ले, अगर बहुत मुशक्कत है तो ना रखें और इंशाल्लाह ताला फिर बाद में रख लें। मुसाफिर के लिए ये है कि वो भी रोज़ा छोड़ सकता है और बाद में उसकी कज़ा करेगा। ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है रोज़े में, तो हाँ जी वो लगाई जा सकती है। हाँ, ऐसी वैक्सीन जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू हो वो वाली नहीं लगाई जा सकती। अगर सैलरी खाते हुए अजान हो जाए तो फिर क्या जल्दी करके खा लें, और ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन ही बस अजान के अभी अल्लाह अकबर हुई नहीं और आपने बस हाथ में ली हुई चीज़ भी फेंक दी, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तरावी का वक्त कब से शुरू होता है, कब तक रहता है? ईशा के बाद से फजर तक आप तरावी पढ़ सकते हैं, वही क़यामुल लैल है, ठीक है? और जो इमाम के साथ करता है क़याम और फिर फजर पढ़ता है तो फिर उसको सारी रात की इबादत का सवाब मिलता है। क्या कुरान पाक खोल के पढ़ सकते हैं तरावी में? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाजों में नहीं पढ़ सकते। अगर किसी को पीरियड्स हुए में या जनाबत की हालत में और सहरी का टाइम हो गया तो क्या करे, सहरी कर ले और सहरी करने के बाद अजान हो भी गई है तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद गुसल करके फिर नमाज पढ़ लें, ठीक है? ना पूछा है कि अगर रोज़े में उल्टी आ जाए, तो उल्टी खुद ब खुद आ जाए तो कोई रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जानबूझ के की है तो फिर रोज़ा टूट जाता है। पीरियड शुरू होंगे तो रोज़े पे इसका क्या असर होता है? जी पीरियड शुरू होते हैं तो अब उसी वक्त आपका रोज़ा टूट जाता है, अब वो रोज़ा काउंट नहीं होगा। अब आप वहाँ से अपनी गिनती शुरू कर लें कि आपने इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इस रोज़े को पूरा करना है। जानबूझ के अगर कोई रोज़ा छोड़ देता है, मतलब कहते हैं एग्ज़ाम है या कोई और ऐसे काम है, तो ये जानबूझ के छोड़ने में ही आता है, क्योंकि छोड़ सिर्फ आप तब सकते हैं जब कोई शरई उज़र हो, यानी बीमारी है या हामिला है या कोई दूध पिलाने वाली है जिस सेहत पे असर होगा या ऐसी कोई चीज़ है, तो फिर देखें वो एक छोड़ने का उज़र है, मगर एग्ज़ाम वगैरह छोड़ने का उज़र नहीं है। तो एक रोज़ा भी जानबूझ के छोड़ दिया, सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहे तो उस रमज़ान के एक रोज़े का वो बदल नहीं हो सकते। जिन दिनों में औरतें रोज़ा नहीं रख सकती यानी पीरियड्स में है तो वो क्या करें? लेकिन किसी को इफ्तारी करा दें, किसी की इफ्तारी का इंतज़ाम कर दें, भी जो आप किसी को इफ्तार कराएंगे तो आपको भी उतना ही अजर मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को मिलता है। और इसी तरह अपनी और बहुत सारे काम कर सकती हैं, अपनी तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी दुआएं कर सकती हैं, कुरान पाक पढ़ सकती हैं या नहीं, इसमें उलमा में इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं पढ़ सकते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं पढ़ सकती। वो जो कहते हैं कि पढ़ सकती हैं वो भी कहते हैं कि छुए बगैर पढ़ें तो आप अपने फ़ोन में पढ़ सकती हैं, ग्लव्स पहन के पढ़ सकती हैं, लेकिन बाहर क्या है कि इसमें इख्तलाफ है, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि किसी को भी मिक्स कहीं से कोई और मैसेज मिले तो फिर ये नहीं सोचेंगे इन्होंने ये बताया था और कुछ और है। और रमज़ान में उम्रा करना कैसा है? जी उम्रे का सवाब रमज़ान में जो आप उम्रा करें वो हज के बराबर अजर है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई कर सकता है तो ज़रूर करे। सहरी को बाज़ लोग बड़ा मामूली समझते हैं, सहरी ज़रूर करें, सहरी का भी सवाब है, सहरी खाने वालों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, तो सहरी ज़रूरी नहीं कि आप पराठे खाएं, आप पानी का गिलास पी लेते हैं तो वो भी सहरी है। बूढ़े और बीमार रमजान के बाद कजा रोजे रखेंगे, बिल्कुल जो जो बीमार ऐसे हैं कि बाद में सेहत याब हो जाएंगे तो वो फिर जाहिर रखेंगे, लेकिन जो बूढ़े हैं जो नहीं रख सकते अपनी कमजोरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो जाहिर है उनकी तो क्रॉनिक एक चीज है ना, वो तो कभी सही नहीं होंगे उससे, तो उनके लिए फिर ये है कि वो फिर फिदिया दे दें। ठीक है, तो अब ये है कि कितनी रकत तरावी पढ़नी चाहिए, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं उसकी बात नहीं है, बात यह है कि देखिए तरावी एक नफली इबादत है। अब आप पांच कह रहे हैं, चार पढ़े, आठ पढ़े, 12 पढ़े, 20 पढ़े, जितनी भी आपको तौफीक हो, या आप उससे भी बढ़ा लें आगे 32 पढ़ लें आप, तो इसकी कोई हद ऐसी नहीं है कि आप, ये नफली इबादत है, अपना शौक, और आप हर एक की अपनी हिम्मत है ना, आप उसको देख के जो 8 पढ़ रहा है आप कहेंगे ये तो बहुत गलत कर रहा है, ना आप उसको देखेंगे जो अगर 20 पढ़ने खड़ा हो गया तो ये तो बहुत इसने कुफर कर दिया, नहीं, नफली इबादत के अंदर आपको आजादी है, जिसकी जितनी हिम्मत है वो उस तरह से करे। ठीक है, अल्लाह ताला आने वाला ये महीना हम सबको बरकतों के साथ और रहमतों के साथ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें समेटने वाला बना दे, अल्लाह ताला आने वाला महीना हमारी बख्शिश का महीना बना दे, हमारी जहन्नुम से आज़ादी का महीना बना दे, अल्लाह ताला इसकी में हमें बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, बेहतरीन शुक्र और जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इस महीने की इबादात को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला इस महीने में हमें राज़ी कर दे और हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला इस आने वाले महीने को हर एक के घर में सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए, और इस महीने की बरकतें और रहमतें समेटने वाला हमें बना दे, अल्लाह ताला इस महीने में लैलतुल कदर की इबादत हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए हमें हमारी इबादतों में, रियाकारी से हमें बचाए, और ऐसे तमाम गुनाहों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे जो हमारी इबादत को ज़ाया करने वाले हों, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे इस आने वाले महीने में, अल्लाह ताला हम सबको खैर के साथ ये महीना देखना नसीब फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।